दानियल की पुस्तक संख्या 59। अंतिम भविष्य सूचक रहस्य का अनावरण यहूदा के गोत्र के सिंह द्वारा चरम मुहर भंग।
परिवीक्षा के समापन से ठीक पहले यहूदा के गोत्र का सिंह अंतिम भविष्य सूचक रहस्य की मुहर खोलता है, और उस मुहर के खुलने से जो ज्ञान की वृद्धि होती है उसे वही बुद्धिमान समझते हैं। प्रकाशित वाक्य के दो गवाह उस समय जो मुहर खोलकर उजागर किया जाएगा, जो मौनूख के जाता है कि अंत शिरिंतर उसके एक हिस्से पर प्रकाश डालते हैं।
यहाँ बुद्धि है, जिसके पास समझ है वह उस पशु की संख्या गिने, क्योंकि वह मनुष्य की संख्या है और उसकी संख्या 666 है। और यहाँ वो मन है जिसमें बुद्धि है, वे 7 सिर 7 पर्वत है जिन पर वह स्त्री बैठती है। प्रकाशित वाक्य 13:18-17-9।
कलीसिया और परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध युद्ध करने वाली अंतिम शक्ति, जिसे मेमने के समान सिंगों वाले एक पशु द्वारा प्रतीकित किया गया था, संयुक्त राज्य अमेरिका है। ये बाइबल की भविष्यवाणी का 6 राज्य है, और उसके राज्य की संरचना वही संरचना प्रतिमा है जो बाइबल की भविष्यवाणी के 5वें राज्य की थी। ये ऐसा राज्य बन जाता है जहां कलीसिया राज्य पर शासन करती है और फिर समूची पृथ्वी को उसी व्यवस्था को स्वीकार करने के लिए बाध्य करता है। कलीसिया और राज्य का ये संयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका में शीघ्र आने वाले रविवार के कानून के समय पूर्णतः विकसित हो जाता है।
पशु की प्रतिमा उस प्रकार के धर्मत्यागी प्रोटेस्टेंट वाद का प्रतिनिधित्व करती है जो तब विकसित होगा जब प्रोटेस्टेंट कलीसियाएं अपने सिद्धांतों के प्रवर्तन के लिए नागरिक सत्ता की सहायता मांगेंगी। पशु का चिन्ह अभी भी परिभाषित किया जाना बाकी है। द ग्रेट कॉन्ट्रोवर्सी 414।
पशु का प्रतिरूप और पशु का चिन्ह दो अलग अलग बात प्रतीक है, फिर भी रविवार के कानून के समय ही पशु का प्रतिरूप अपने पूर्ण विकास तक पहुंचता है।
प्रोटेस्टेंट कलीसियाओं द्वारा रविवार पालन का प्रवर्तन पोपतंत्र अर्थात पशु की उपासना का प्रवर्तन है, जो लोग चौथी आज्ञा की मांगों को समझते हुए सच्चे विश्राम दिन के स्थान पर झूठे का पालन करना चुनते हैं। वे इस प्रकार उसी शक्ति को सम्मान अर्पित करते हैं जिसके द्वारा ही इसका आदेश दिया गया है। परंतु किसी धार्मिक कर्तव्य को धर्मनिरपेक्ष सत्ता के बल से लागू करने के इसी कार्य में कलीसियाएं स्वयं पशु की प्रतिमा बना देंगी, अथा संयुक्त राज्य अमेरिका में रविवार पालन का प्रवर्तन पशु और उसकी प्रतिमा की उपासना का प्रवर्तन होगा। महान विवाद 548-548।
रविवार के कानून के समय संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान पूरी तरह उलट दिया जाता है और राष्ट्र धर्मनिष्ठा से पूर्णतः अलग हो जाता है। तब शैतान के पूर्ण नियंत्रण में संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व को उसी चर्च और राज्य की व्यवस्था को स्वीकार करने के लिए मजबूर करता है जो अभी अभी संयुक्त राज्य में स्थापित की गई है। विश्व सरकार संयुक्त राष्ट्र है, और रोमी कलीसिया वो कलीसिया है जो इस संबंध पर शासन करती है।
संसार तूफान, युद्ध और वैमनस्य से भरा हुआ है, तो भी एक ही प्रधान के अधीन, पापल सत्ता के अधीन, लोग उसके साक्षियों के व्यक्तित्व में परमेश्वर का विरोध करने के लिए एक हो जाएंगे। टेस्टिमोनीज 107:1800 पर आईडी।
कलीसिया और राज्य का वो तंत्र जिसे भविष्यवाणी में पशु की प्रतिमा के रूप में दर्शाया गया है, अजगर पशु और झूठे भविष्यद्वक्ता का एक त्रिपक्षीय गठबंधन भी है। प्रकाशित वाक्य 17:10 राजा जो 7वां सिर है अजगर की शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं।
राजाओं, शासकों और राज्यपालों ने अपने ऊपर मसीह विरोधी की छाप धारण कर ली है, और उन्हें उस अजगर के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो पवित्र लोगों के विरुद्ध, उनके विरुद्ध जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं और यीशु के विश्वास को रखते हैं, युद्ध करने जाता है। टेस्टिमनीज टू मिनिस्टर्स 38।
10 राजा संयुक्त राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसका धर्म अध्यात्मवाद है, और झूठे भविष्यद्वक्ता का धर्म अपधर्मी प्रोटेस्टेंटवाद है, और पशु का धर्म कैथोलिक धर्म है जो केवल ईसाई धर्म की घोषणा का आवरण ओढ़े हुए अध्यात्मवाद है।
परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन करते हुए पोपतंत्र की स्थापना को लागू करने वाले विधिक आदेश के द्वारा हमारा राष्ट्र अपने को धर्म से पूर्णतः पृथक कर लेगा। जब प्रोटेस्टेंटवाद उस खाई के पार अपना हाथ बढ़ाकर रोमी सत्ता का हाथ थाम लेगा, जब वो उस अथाह गर्त के ऊपर से बढ़कर आत्मावाद के साथ हाथ मिला लेगा, जब इस त्रिगुणात्मक संघ के प्रभाव में हमारा देश एक प्रोटेस्टेंट और गणतंत्रीय शासन के रूप में अपने संविधान के प्रत्येक सिद्धांत का तिरस्कार करेगा और पोपीय मिथ्याओं और भ्रांतियों के प्रसार के लिए व्यवस्था करेगा, तब हम जान सकेंगे कि शैतान की अद्भुत कार्यवाही का समय आ पहुंचा है और अंत निकट है। टेस्टिमोनीज खंड 5:4-5:1।
रविवार का कानून आने पर ड्रैगन, पशु और झूठे नबी का त्रिविध संघ पूरा हो जाता है। तब संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया को संयुक्त राष्ट्र की एक विश्व सरकार को स्वीकार करने के लिए बाध्य करता है, क्योंकि रविवार का कानून लागू होते ही दुनिया गहरे संकट में पड़ जाती है। चूंकि इस्लाम सूर्य उपासना को लागू कराने के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका पर न्याय लाता है, फिर शैतान मसीह का रूप धारण करके प्रकट होता है, और जैसे ही संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया को चर्च और राज्य के एक विश्व संयोजन को स्वीकार करने के लिए मजबूर करता है, वो दुनिया को रविवार को विश्राम दिवस के रूप में स्वीकार करने के लिए भी मजबूर करता है। वही परीक्षण प्रक्रिया जो संयुक्त राज्य अमेरिका में हो चुकी है, तब पूरे विश्व पर लागू की जाती है।
विदेशी जातियां संयुक्त राज्य अमेरिका के उदाहरण का अनुसरण करेंगी। यद्यपि वो अग्रणी होती है, तो भी वही संकट हमारे लोगों पर संसार के सब भागों में आएगा। टेस्टिमनीज वॉल्यूम 6:395।
राष्ट्रीय धर्म त्याग के बाद राष्ट्रीय विनाश होता है। ये सिद्धांत हर देश पर तब आ पड़ता है जब वो उपासना के दिन के रूप में सूर्य का दिन स्वीकार करता है। बढ़ता हुआ संकट वही एक घंटा है जिसमें 10 राजा पाप का मनुष्य कहे जाने वाले पोप के साथ मिलकर शासन करते हैं। उन्होंने अपने 7वें राज्य को पोप की सत्ता के अधीन सौंपने पर सहमति की, क्योंकि उन्हें ये विश्वास दिलाया गया है कि इस्लाम के विरुद्ध तेजी से बढ़ते युद्ध के मुकाबले दुनिया को एकजुट करने के लिए पोप तंत्र का नैतिक अधिकार आवश्यक है। 10/1798 में संयुक्त राष्ट्र अभ्यर्थि के इतिहास में आया नहीं था।
और जो 10 सींग तूने देखे, वे 10 राजा हैं जिन्हें अभी तक कोई राज्य नहीं मिला, परंतु वे पशु के साथ एक घड़ी के लिए राजा के समान अधिकार पाएंगे। इनका मन एक होगा और वे अपना अधिकार और सामर्थ्य पशु को दे देंगे। वे मेमने से युद्ध करेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वो प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, और जो इसके साथ है वे बुलाए हुए, चुने हुए और विश्वास योग्य है। प्रकाशित वाक्य 70:12-14।
जैसा कि पोप के मामले में हमेशा से रहा है, राजा पापसी को वो शक्ति देंगे ताकि वो परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध उत्पीड़न कर सके, और वही 10 राजा हैं जो मेमने के साथ युद्ध करते हैं, परंतु वे ये सब पाप का मनुष्य के मामले पर कर रहे हैं। पाप का मनुष्य वही मनुष्य भी है जिसे यशाया अध्याय 4:7 कलीसियाएं पकड़ लेती है।
और उस दिन 7 स्त्रियां एक पुरुष को पकड़ लेंगी और कहेंगी, हम अपना रोटी स्वयं खाएंगी और अपने वस्त्र स्वयं पहनेंगी, बस हमें तेरे नाम से पुकारा जाने दे ताकि हमारा अपमान दूर हो। उस दिन प्रभु की शाखा सुंदर और महिमामय होगी और भूमि का फल इज़राइल के बच निकले हुए लोगों के लिए उत्तम और मनोहर होगा। यशाया 4:1-2।
7 स्त्रियां ये दर्शाती हैं कि पोपतंत्र पाप का मनुष्य का पृथ्वी की सभी कलीसियाओं पर नियंत्रण कहे, जैसे कि वो सभी राष्ट्रों पर नियंत्रण रखता है। कलंक, जिससे कलीसियाएं बचना चाहती हैं, वो रविवार को उपासना करने की मांग को अस्वीकार करने का कलंक है। निष्ठावान शब्दपालक अपनी निष्ठा के कारण उत्पीड़ित किए जाएंगे, और इस्लाम भी सूर्य के दिन का पालन करने से इनकार करेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा पोपतंत्र और संयुक्त राष्ट्र के बीच जो समझौता कराया गया है, वो ये है कि पृथ्वी पर शांति स्थापित करने के लिए इस्लाम के विरुद्ध युद्ध को स्वीकार कराने हेतु विश्व का नेतृत्व करने में पाप के मनुष्य का नैतिक अधिकार ही आवश्यक है।
परंतु हे भाइयों, समयों और कालों के विषय में तुम्हें लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम आप ही भलीभांति जानते हो कि प्रभु का दिन रात में चोर के समान आता है। जब वे कहते होंगे शांति और सुरक्षा, तभी उन पर अचानक विनाश आ पड़ेगा, जैसे गर्भवती स्त्री को प्रसव पीड़ा, और वे किसी रीति से नहीं बचेंगे। परंतु हे भाइयों, तुम अंधकार में नहीं हो कि वो दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। तुम सब ज्योति के संतान और दिन के संतान हो। हम न रात के हैं न अंधकार के। 1 थिस्सलुनीकियों 5:1-5।
बाइबल की भविष्यवाणी का शांति और सुरक्षा संदेश, जिसे हमेशा एक झूठे संदेश के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, केवल उसी काल में तर्कसंगत है जब शांति और सुरक्षा नहीं होती। जब शांति और सुरक्षा विद्यमान हो, तब शांति और सुरक्षा का संदेश प्रस्तुत करने का कोई कारण नहीं है। इस्लाम सारी शांति और सुरक्षा को समाप्त कर देता है। झूठे संदेश से जुड़ा अचानक विनाश ऐसा विनाश है जो बढ़ता जाता है, क्योंकि वो प्रसव पीड़ा में एक स्त्री के समान है। तीसरी विपत्ति की पहली प्रसव पीड़ा 11 सितंबर 2001 थी। एलिया और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की भविष्यवाणी की रेखाओं में पापाई सत्ता के छल का चित्रण किया गया है। जब आहाब सामरिया लौटा ताकि इजबेल को ये बताए कि एलिया का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है, क्योंकि उसने स्वर्ग से आग उतार दी थी, तब आहाब को समझ आया कि एलिया के प्रति अपनी घृणा के बारे में इजबेल ने उसे धोखा दिया था। वही घृणा और छल तब भी प्रकट हुआ जब हेरोद ने अपने जन्मदिन के भोज में सलोमी से अपने राज्य का आधा भाग देने का वादा किया। सलोमी हेरोदिया की बेटी थी। इस प्रकार हेरोद अजगर था, हेरोदिया पापाई सत्ता थी और सलोमी झूठा नबी थी। कहानी में सलोमी के नृत्य की छलपूर्ण शक्ति का उपयोग किया गया, जिससे हेरोद 10 राजा बहकाए गए और अपने राज्यों का आधा भाग एक कलीसिया, एक स्त्री को सौंप दिया। वह स्त्री सलोमी अपनी माता कैथोलिकवाद के निर्देशन में थी और हेरोद को बहुत देर से पता चला कि हेरोदियास का यूहन्ना के प्रति रुख वैसा ही था जैसा यजबेल का एलिया के प्रति था। दोनों ही मामलों में विश्राम दिन का पालन करने वालों को मरना ही था। इस्लाम क्रमिक रूप से किंतु तेजी से पृथ्वी से शांति और सुरक्षा छीन लेता है और ऐसा करते हुए मानव जाति को इस्लाम के विरुद्ध एकजुट कर देता है। इस्लाम का तीव्र गति से बढ़ता युद्ध उस दलील का प्रतिनिधित्व करता है जिसका उपयोग अंतिम दिनों में पशु की विश्वव्यापी प्रतिमा स्थापित करने के लिए किया जाता है। जो धोखा संसार पर 10 राजाओं पर लाया जाता है, वह संयुक्त राज्य अमेरिका सलोमे द्वारा लाया जाता है और वह संसार को ये विश्वास दिलाता है कि उन्हें इस्लाम के विरुद्ध एकजुट होना चाहिए। पर वे बहुत देर से ये जान पाते हैं कि ये व्यवस्था तो केवल सप्त का पालन करने वालों को सताने के लिए रची गई एक चाल थी। ये धोखा उन कारणों का हिस्सा है जिनके चलते 10 राजा उस वेश्या से घृणा करते हैं, यद्यपि दबाव में आकर उन्होंने अपना सातवां राज्य उसे दे देने पर सहमति जताई थी।
और जो 10 सींग तूने उस पशु पर देखे, वे उस वेश्या से घृणा करेंगे और उसे उजाड़ और नग्न कर देंगे और उसका मांस खाएंगे और उसे आग से जला देंगे, क्योंकि परमेश्वर ने उनकी हृदयों में अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ये बात डाल दी है कि वे एक मन हों और अपना राज्य उस पशु को दे दें जब तक कि परमेश्वर के वचन पूरे ना हो जाए। प्रकाशित वाक्य 17:16-17।
संयुक्त राष्ट्र के वैश्विकतावादी केवल पृथ्वी के राजा ही नहीं है, बल्कि उन्हें व्यापारी के रूप में भी चित्रित किया गया है। इस प्रकार वैश्विकतावादी राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों से मिलकर बने हैं। जो स्वर्गदूत प्रकाशित वाक्य 17 और 18 का दर्शन यूहन्ना के पास लाया, उसका उद्देश्य यूहन्ना को टायर की महान वेश्या का न्याय दिखाना था। वैश्विकतावादियों की दोनों श्रेणियां पोपाई सत्ता की मृत्यु पर विलाप करती हैं।
इस कारण उसकी विपत्तियां एक ही दिन में आ पड़ेंगी, मृत्यु, शोक और अकाल, और वो आग से पूरी तरह जला दी जाएगी, क्योंकि जो उसका न्याय करता है वो प्रभु परमेश्वर बलवान है, और पृथ्वी के राजा जिन्होंने उसके साथ व्यभिचार किया और उसके साथ विलासिता में रहे, जब उसके जलने का धुआं देखेंगे तो उसके लिए विलाप करेंगे और शोक मनाएंगे, उसकी यातना के भय से दूर खड़े होकर कहते हुए, हाय हाय वो महान नगर बाबुल, वो शक्तिशाली नगर, क्योंकि एक ही घंटे में तेरा न्याय आ पहुंचा। और पृथ्वी के व्यापारी उसके लिए रोएंगे और शोक करेंगे, क्योंकि अब कोई उनकी वस्तुएं नहीं खरीदता। प्रकाशित वाक्य 18:8-11।
व्यापारी और राजा दोनों दूर खड़े होकर हाय हाय पुकारते हैं। ग्रीक में अलास शब्द का अनुवाद प्रकाशित वाक्य के 8वें अध्याय में वो के रूप में किया गया है।
और मैंने देखा और एक स्वर्गदूत को आकाश के मध्य में उड़ते हुए सुना,
जो बड़े शब्द से कह रहा था, हाय 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 पृथ्वी के निवासियों पर उन तीन स्वर्गदूतों की तुरही की शेष ध्वनियों के कारण जिन्हें अब भी फूंकना बाकी है। प्रकाशित वाक्य 8-9 देश।
तीन विपत्तियां, पांचवी, छठी और सातवीं, तुरहियों का प्रतिनिधित्व करती हैं और वे इस्लाम के प्रतीक हैं। राजा, व्यापारी और जहाज के कप्तान सब अध्याय 18 में तीन बार हाय हाय पुकारते हैं।
और पृथ्वी के राजा जिन्होंने उसके साथ व्यभिचार किया और उसके साथ ऐश विलास में रहे हैं, जब वे उसके जलने का धुआं देखेंगे तो उसके लिए विलाप करेंगे और शोक मनाएंगे। उसकी यातना के भय से दूर खड़े होकर कहेंगे, हाय हाय वो बड़ा नगर बाबुल, वो शक्तिशाली नगर, क्योंकि एक ही घड़ी में तुझ पर न्याय आ पहुंचा है। इन वस्तुओं के व्यापारी जो उससे धनी हो गए थे, उसकी यातना के भय से दूर खड़े रहकर रोएंगे और विलाप करेंगे और कहेंगे, हाय हाय वो बड़ा नगर जो सूक्ष्म मलमल और जामुनी विडमिजी जबा पर पहने था और सोने, बहुमूल्य पत्थरों और मोतियों से सुसज्जित था, क्योंकि एक ही घड़ी में इतनी बड़ी धन संपदा विनष्ट हो गई है। और हर जहाज का कप्तान और जहाजों के सब दल और नाविक और जितने समुद्र के द्वारा व्यापार करते हैं सब दूर खड़े थे, और जब उन्होंने उसके जलने का धुआं देखा तो पुकार कर कहने लगे, इस बड़े नगर के समान कौन सा नगर है? और उन्होंने अपने सिर पर धूल डाली और रोते वे विलाप करते हुए पुकार कर कहा, हाय हाय वो बड़ा नगर जहां समुद्र में जहाज रखने वाले सब उसके वैभव के कारण धनी बनाए गए थे, क्योंकि एक ही घड़ी में वो उजाड़ कर दी गई है। प्रकाशित वाक्य 18-9 देश 15 नवंबर।
जिस घड़ी में पापसी का न्याय पूरा होता है वही प्रकाशित वाक्य 11 की घड़ी है, अर्थात महान भूकंप की घड़ी, और ये उस रविवार के कानून के समय काल का प्रतिनिधित्व करती है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में रविवार का कानून लागू होने से आरंभ होता है और तब तक चलता रहता है जब तक मिकाएल उठ खड़ा नहीं होता और मानव का अनुग्रह काल बंद नहीं हो जाता। वे वैश्विकवादी जो वेश्या से घृणा करते थे परंतु फिर भी एक घड़ी के लिए अपना राज्य उसे देने पर सहमत हुए, न केवल हाय हाय अफसोस अफसोस को तीन बार दोहराते हैं, बल्कि ये प्रश्न भी पूछते हैं, इस महान नगर के समान कौन सा नगर है? ये प्रश्न उन्होंने यहेजकेल की पुस्तक में भी पूछा था।
और वे तेरे विरुद्ध अपना स्वर सुनाएंगे और कटु क्रंदन के साथ चिल्लाएंगे और अपने सिरों पर धूल उछालेंगे, वे राख में लौटेंगे और वे तेरे लिए अपने को बिल्कुल गंजा कर लेंगे और टाट बांधेंगे, और वे तेरे लिए मन की कड़वाहट से और कटु क्रंदन के साथ रोएंगे, और अपने विलाप में वे तेरे लिए शोक गीत उठाएंगे और तेरे विषय में ये कहकर विलाप करेंगे, समुद्र के बीच उजाड़ की गई टायरस के समान कौन सा नगर है? जब तेरे माल समुद्रों से निकलते थे तूने बहुत से लोगों को भरपूर किया, तूने अपनी बहुतायत धन संपदा और अपने व्यापार से पृथ्वी के राजाओं को धनी बना दिया। जब समुद्रों के द्वारा जल की गहराइयों में तू टूट जाएगी तब तेरा माल और तेरे बीच का सारा संग तेरे साथ डूब जाएगा। द्वीपों के सब निवासी तुझ पर चकित होंगे और उनके राजा अत्यंत भयभीत होंगे, उनके मुखों पर व्याकुलता छा जाएगी। लोगों के बीच के व्यापारी तुझ पर सी सी करेंगे, तू भय का कारण बनेगी और फिर कभी न होगी। यहेजकेल 27 तन थरीष्ठीसिस।
यहेजकेल उस नगर को टायरस कहता है जो समुद्र के बीच में नष्ट कर दिया गया है। यशाया टायरस की वेश्या के विषय में बोलते हुए, जो प्रकाशित वाक्य की महावेश्या भी वे जो कि कैथोलिक कलीसिया है उसे मुकुट पहनाने वाला नगर भी कहता है।
क्या यह तुम्हारा उल्लासमय नगर है जिसकी प्राचीनता आदिकाल की है? उसके अपने पांव उसे परदेश में रहने के लिए दूर ले जाएंगे। सोर के विरुद्ध, उस मुकुटधारी नगर के विरुद्ध जिसके व्यापारी राजकुमार हैं और जिसके सौदागर पृथ्वी के माननीय हैं, ये परामर्श किसने किया है? सेनाओं के प्रभु ने ये ठहराया है कि वो सारी महिमा के अभिमान को कलंकित करे और पृथ्वी के सब माननीयों को तुच्छ ठहराए। यशाया 23:7-9।
पापाई सत्ता मुकुटधारी नगरी है क्योंकि वही त्रिविध एकता पर रानी की तरह विराजने का दावा करती है।
जितना उसने अपने को महिमा मंडित किया है और विलास किया है, उतना ही उसे यातना और शोक दो, क्योंकि वो अपने मन में कहती है, मैं रानी बनकर बैठी हूँ और मैं विधवा नहीं हूँ और मुझे कोई शोक नहीं होगा। प्रकाशित वाक्य 18:7।
हिज़्गेल ने कहा कि वेश्या का न्याय समुद्र के बीचों बीच पूरा हो गया है टायरस के लिए अपने विलाप में।
प्रभु का वचन मेरे पास फिर आया ये कहते हुए, अब हे मनुष्य के पुत्र, टायरस के लिए विलाप कर। तर्शीश के जहाज तेरे बाजार में तेरा गुणगान करते थे, और तू समुद्रों के बीच परिपूर्ण और अत्यंत महिमामय हो गया था। तेरे खेवनहारों ने तुझे बड़े जल में पहुंचा दिया है, पूर्वी पवन ने समुद्रों के बीच तुझे तोड़ डाला है। यहेजकेल 27:1-2, 25:26।
पूर्वी पवन ही मुकुटधारी नगर टायर की वेश्या पर न्याय लाती है, और पूर्वी पवन इस्लाम का प्रतीक है। 10 राजाओं द्वारा इस्लाम के विरुद्ध छेड़ा गया युद्ध ही आखिरी दिनों में पोप की सत्ता को नष्ट करता है। जब 10 राजाओं को यह एहसास होता है कि उन्हें धोखा दिया गया है, तो उनके हृदयों में भी भय उत्पन्न होता है।
अपनी स्थिति में सुंदर और सारी पृथ्वी का हर्ष सियोन पर्वत है, जो उत्तर की ओर स्थित महान राजा का नगर है। उसके महलों में परमेश्वर शरण स्थान के रूप में जाना जाता है, क्योंकि देखो राजा इकट्ठे हुए, वे एक साथ आगे बढ़े। उन्होंने उसे देखा और अचंभित हो गए, वे घबरा गए और जल्दी से चले गए। वहां भय ने उन्हें जकड़ लिया और पीड़ा जैसे प्रसव में स्त्री की। तू पूर्वी पवन से तर्शी के जहाजों को तोड़ देता है, जैसा हमने सुना है वैसा ही हमने सेनाओं के प्रभु के नगर में, अपने परमेश्वर के नगर में देखा है। परमेश्वर उसे सदा के लिए स्थापित करेगा। सेला। भजन संहिता 48:2-8।
वैश्विकतावादियों ने परमेश्वर के राज्य को, जिसका प्रतिनिधित्व यरूशलेम नगर करता है, देखा, परंतु उन्होंने वहां महान नगरी बाबुल को अपना मुख्य केंद्र चुना। जब परमेश्वर उस महान नगरी का न्याय करता है, तो वे ये जानकर कि उनका नाश हो गया है, रोते और विलाप करते हैं, क्योंकि जिस महान नगरी को उन्होंने चुना था, वो उनके ऊपर इस्लाम पूर्वी पवन द्वारा लाए गए युद्ध से समुद्र के बीचों बीच चूर चूर हो गई है। और वो युद्ध क्रमशः ही तीव्र होता जाता है, क्योंकि वो प्रसव पीड़ा में पड़ी स्त्री के समान है। परमेश्वर का वो राज्य जिसे उन्होंने पोप सत्ता की खातिर सताया है, दानियेल के 2 अध्याय में दर्शाया गया है, जहां हमें ये बताया गया है कि इन वैश्विकतावादी राजाओं के दिनों में परमेश्वर अपना अनंत राज्य स्थापित करेगा।
और इन राजाओं के दिनों में स्वर्ग परमेश्वर एक ऐसा राज्य स्थापित करेगा जो कभी नष्ट नहीं होगा, और वो राज्य किसी दूसरे लोगों को नहीं दिया जाएगा, परंतु वो इन सब राज्यों को चूर चूर करके उनका अंत कर देगा, और वो सदा तक बना रहेगा। दानियेल 2:34।
मिलर राइट्स का मानना था कि वे इन राजाओं के दिनों में जी रहे थे, लेकिन प्रकाशित वाक्य 17:10 राजा अभी इतिहास में आए नहीं थे। वास्तव में वे अब जाकर सामने आने लगे हैं। मिलर राइट सही थे, पर उनकी दृष्टि सीमित थी। प्रकाशित वाक्य 17 और 18 के राजाओं के दिनों में जो परमेश्वर का राज्य स्थापित होता है, वही अंतिम वर्षा का काल है।
मैंने देखा कि सभी अपने सामने आने वाले आसन्न संकट पर गंभीरता से नज़र लगाए हुए हैं और अपने विचार उसी पर केंद्रित किए हुए हैं। इसराइल के पापों को पहले ही न्याय में प्रस्तुत होना चाहिए। हर पाप का पवित्र स्थान में अंगीकार किया जाना चाहिए, तब कार्य आगे बढ़ेगा। ये अभी किया जाना चाहिए। क्लेश के समय शेष बचे लोग पुकारेंगे, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पिछली वर्षा उन पर आ रही है जो शुद्ध हैं, तब सब उसे पूर्ववत प्राप्त करेंगे। जब वे चारों स्वर्गदूत छोड़ देंगे, तब मसीह अपना राज्य स्थापित करेंगे। उत्तर वर्षा कोई भी प्राप्त नहीं करेगा, सिवाय उनके जो अपनी पूरी सामर्थ्य के अनुसार सब कुछ कर रहे हैं। मसीह हमारी सहायता करेंगे। परमेश्वर की अनुग्रह से यीशु के लहू के द्वारा सभी जयवंत हो सकते हैं। सारा स्वर्ग इस कार्य में रुचि रखता है, स्वर्गदूत भी रुचि रखते हैं। स्पॉल्डिंग एंड मैगन 3।
अंतिम वर्षा के समय जब स्वर्गदूत चारों पवनों को छोड़ते हैं, जो इन राजाओं के दिनों में है, मसीहे अपना राज्य स्थापित करता है। अंतिम वर्षा क्रमशः आगे बढ़ने वाली है और 11 सितंबर 2001 को फुहार के रूप में शुरू हुई, जब तीसरी विपत्ति इतिहास में आई, परंतु राष्ट्रों के क्रोध को तत्क्षण रोक दिया गया। ये अपनी तीव्रता में बढ़ती रहती है संयुक्त राज्य अमेरिका में रविवार के कानून तक, जब ये राष्ट्रीय विनाश ला देती है। वह बढ़ता हुआ दंड तब जारी रहता है क्योंकि अन्य हर राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका के उदाहरण का अनुकरण करता है और इसलिए वही दंड भुगतता है। ये अनुग्रह काल के समाप्त होने तक बढ़ता जाता है। ये प्रसव पीड़ा में स्त्री के समान आगे बढ़ता है। हम अगले लेख में 7 के 8वें प्राणी की विवेचना जारी रखेंगे।
जब तक सत्य का अंगीकार करने वाले लोग शैतान की सेवा करते रहेंगे, उसकी नरकीय छाया उन्हें परमेश्वर और स्वर्ग का दर्शन करने से वंचित कर देगी। वे उन लोगों के समान होंगे जिन्होंने अपना पहला प्रेम खो दिया है। वे शाश्वत वास्तविकताओं को नहीं देख सकेंगे। जो कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है, वो जकरिया अध्याय 3 और 4 तथा 4:10-1 के दर्शाया गया है। और मैंने फिर उत्तर दिया और उससे कहा, ये 2 जैतून की डालियां क्या हैं जो 2 स्वर्ण नलिकाओं के द्वारा अपने आप से स्वर्ण तेल उंडेलती हैं? और उसने मुझे उत्तर दिया और कहा, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या हैं? मैंने कहा, नहीं मेरे प्रभु। तब उसने कहा, ये वे 2 अभिषिक्त हैं जो सारी पृथ्वी के प्रभु के पास खड़े हैं। प्रभु संसाधनों से परिपूर्ण हैं, उन्हें किसी भी साधन की कमी नहीं है। हमारे विश्वास की कमी, हमारी सांसारिकता, हमारी खोखली बातें, हमारा अविश्वास जो हमारी बातचीत में प्रकट होता है, इन्हीं के कारण हमारे चारों ओर अंधकारमय छायाएं घिराती हैं। हमारी वाणी और आचरण में मसीह उस सर्वथा मनोहर 10,000 में श्रेष्ठतम के रूप में प्रकट नहीं होते। जब आत्मा निरर्थक दंभ में स्वयं को ऊंचा उठाने पर संतुष्ट हो जाती है, तब प्रभु का आत्मा उसके लिए बहुत कम कर पाता है। हमारी निकटदर्शी दृष्टि छाया को तो देखती है, पर उसके पार की महिमा को नहीं देख पाती। स्वर्गदूत चारों पवनों को थामे हुए हैं, उन्हें एक क्रोधित घोड़े के रूप में दर्शाया गया है जो बंधन तोड़कर सारी पृथ्वी पर दौड़ जाने को उतावला है, अपनी राह में विनाश और मृत्यु साथ लिए हुए। क्या हम अनंत संसार की बिल्कुल दहलीज पर सोए रहेंगे? क्या हम सुस्त, ठंडे और मृत बने रहेंगे? ओह, काश कि हमारी कलीसियाओं में परमेश्वर की आत्मा और श्वास उसके लोगों में फूंकी जाए, ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हों और जिएं। हमें ये देखना चाहिए कि मार्ग संकरा है और द्वार तंग है, परंतु जब हम उस तंग द्वार से होकर गुरबार से हैं, तो उसकी व्यापकता असीमित होती है। पांडुलिपि प्रकाशन खंड 20 17 हरडा।